11 संसद की वाणी चल रही थी ये तो कयामत का समय है, सभी हिसाब किताब चुक तू करके वापस चले जाएंगे। ये बेहद का ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। 2/11/67 की वाणी का 4वां पेज। तुम्हारे सिवाय और कोई इस राज को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा के पास आए हैं और कल्प कल्प हम ही आते हैं। बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए बाप के पास आते हैं। हम जीव की आत्माएं आई है। बाबा ने भी आकर के जीव में ही प्रवेश किया है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं, इनको भी बैठ समझाता हूं। साधारण तन में आता हूं इनको भी बैठ समझाता हूं, यहां भी क्यों लगा दिया? आता हूं साधारण तन में और इनको भी बैठ समझाता हूं। इनको माने किनको है? ब्रह्मा को भी बैठ समझाता हूं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो माने कौन नहीं जानता है? इनको बैठ समझाता हूं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। किनको बैठ समझाता हूं है? ब्रह्मा को बैठ समझाता हूं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। माने तुम गीता का भगवान कृष्ण नहीं हो। अगर तुम जानते हो तो तुम्हें ही गीता का भगवान कृष्ण होने चाहिए। तो इनको भी समझाता हूं कि तुम गीता का भगवान कृष्ण नहीं हो। अब तुम जानते हो जब मैंने बताया, ये भी जानते हो कैसे बाप ने प्रवेश किया। और कोई भी ऐसे कह न सके कि बच्चों आत्माभिमानी होकर के बैठो। क्यों? दूसरा कोई क्यों नहीं कह सकता कि आत्माभिमानी होकर बैठो? क्योंकि इस दुनिया में जो भी जीव आत्माएं हैं वो सब देह अभिमानी है। सबको देह धारण करनी पड़ती है। सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं, देह के बंधन में आते हैं। तो कोई कह नहीं सकता कि अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। और ये भी समझाता हूं कि ये वही महाभारी महाभारत लड़ाई है। इसमें अनेक धर्म भी हैं और सब धर्म पतित बन गए हैं। अब फिर बाप पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। तुमसे कोई पूछे कि तुम शास्त्रों को मानते हो, बोलो। एक होता है ज्ञान, और ज्ञान एक से आता है। और शास्त्र कितने मनुष्यों ने लिखे हैं? ढेर के ढेर शास्त्र हैं और ढेर लिखने वाले हैं। तो भक्ति आती है रावण से, अनेक सिर वालों से। ज्ञान आता है एक से, और कलयुग के अंत में एक ही सच्चा होता है, बाकी सब झूठे हो जाते हैं। तो एक है ज्ञान, दूसरी है भक्ति। ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, और ये शास्त्र तो हम जन्म जन्म अंतर पढ़ते आए। ज्ञान से तो सदगति होती है, शास्त्रों के पढ़ने से कोई की सदगति नहीं हुई। अभी हमको बाप ज्ञान दे रहे हैं, भक्ति के बाद ज्ञान होता है। अभी बाप हमको अपना परिचय भी दे रहे हैं। बाप का परिचय बाप के सिवाय और कोई भी दे भी नहीं सकता, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी बाप समझाते हैं, जिस राज से हम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान मिल जाता है। अभी हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अभी तक इन स्थूल नेत्रों से जो दुनिया देखते थे उस दुनिया का ही हमको ज्ञान था। इन आंखों से जो नहीं दिखाई पड़ती है आत्मा और परमात्मा, उनके बारे में सच्चाई का ज्ञान हमको नहीं था। अभी तीसरे नेत्र से हम उसको पहचानते हैं। ऐसे नहीं हम भक्ति को मानते नहीं हैं, भक्ति को भी मानते हैं। अभी हमको ज्ञान मिल रहा है तो ये भक्ति छूट जाती है, क्योंकि भक्ति से होती है दुर्गति, और अनेक जन्मों से दुर्गति होती चली आई। ज्ञान से होती है सदगति, और एक ही जन्म में ज्ञान से सदगति हो जाती है। ज्ञान को दिन कहा जाता है, ज्ञान एक सूर्य से आता है। सितारों से ज्ञान आता है क्या? सितारों से रोशनी आती है क्या? तो ज्ञानदाता एक है, बाकी सब है अज्ञानदाता। ये सारी दुनिया ही विकारी है, जहां असुर रहते हैं, और बाप जो दुनिया बनाते हैं वो निर्विकारी दुनिया है। भारतवासियों को ये बात भूल गई है कि हम ही देवता थे, फिर 84 जन्म लेकर हम यहां तक आए पहुंचे हैं। भारत ही अविनाशी खंड है, और सब खंडों का विनाश हो जाता है। क्यों? भारत ही अविनाशी खंड क्यों है? क्योंकि अविनाशी बाप अविनाशी ज्ञान आकर के भारत में देते हैं। भारत अविनाशी खंड बन जाता है, और दूसरे खंडों में बाप आते नहीं है, तो वो अविनाशी खंड नहीं है। उन सब का विनाश हो जाता है। अभी फिर नई दुनिया होगी। विनाश के लिए देखो कितनी तैयारियां हो रही हैं, कितना खर्चा करते हैं विनाश के लिए। खर्च तो करना चाहिए नई दुनिया स्थापन करने के लिए, विनाश के लिए खर्च क्यों करना चाहिए? राजाई पाने के लिए खर्च करना चाहिए? फिर देखो बुद्धि कैसी बन गई है, विनाश के लिए खर्च करते हैं, और वो भी जिस दुनिया में रहते हैं उसी दुनिया का विनाश करने के लिए खर्च करते हैं। तो कैसी बुद्धि हो गई? विनाशी बुद्धि हो गई। क्योंकि तुमको तो नई दुनिया चाहिए, इसलिए तुम नई दुनिया के लिए खर्च करते हो, राजाई पाने के लिए खर्च करते हो, और ये तो पढ़ाई है जो नई दुनिया के लिए काम आती है। उस दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। ये दुनिया है मृत्यु लोक, यहां सबकी अनिच्छा से मृत्यु हो जाती है। कोई चाहता है कि हमारी मृत्यु हो जाए? चाहता कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जबरियन मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और नई दुनिया में क्या मृत्यु नहीं होगी? मृत्यु तो होगी, लेकिन इच्छा मृत्यु होगी, इसलिए उसको अमर लोक कहा जाता है। इसी दुनिया को मृत्यु लोक कहा जाता है। तुम सब पार्वतियां हो, बाप अमरनाथ तुमको अमर बनाने के लिए अमर कथा सुनाई रही है। भगवान वाच, मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूं, नर से नारायण जैसा बनाता हूं, और दुनिया में कोई भी नहीं है जो तुमको नर से नारायण मनुष्य से देवता बना सके। और जो भी पढ़ाइयां हैं उनमें और प्रकार की डिग्री देते हैं, डॉक्टर बनाएंगे, मास्टर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन राजाओं का राजा महाराजा नारायण कोई नहीं बनाता। मृत्यु लोक से अमर लोक में मैं ले जाता हूं, वाया शांति धाम। तुम बच्चे ही कह सकते हो, बाबा फिर से यह राज्य स्थापन कर रहे हो, ऐसे और कोई मुख से कह नहीं सकता। तुम्हारी ये अहम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनने की। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, इसलिए पहले पहले ये चित्र मुख्य है। कौन सा? लक्ष्मी नारायण का चित्र। फिर गीता का भगवान कौन है, वो चित्र भी साथ में रखना चाहिए। वो कौन सा चित्र है जो लक्ष्मी नारायण के चित्र के साथ रखना चाहिए? है तीन मूर्तियां, तीन मूर्तियां गीता का भगवान है, है? तीन मूर्ति में से एक मूर्ति तो वही रखी हुई है, ब्रह्मा और कृष्ण, उसको तो काट दिया कि वो गीता का भगवान नहीं है। तो तीन मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति है जो गीता का भगवान है? ये विश्व के मालिक कैसे बने? कौन? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण पहले या विश्व का मालिक बनाने वाले पहले? वो कौन? शिव बाबा। जरूर जिसने मुख से ज्ञान सुनाया वो विश्वनाथ कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर ही डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर इंजीनियर बनाता है, तो सारे विश्व का नाथ कौन बनाएगा? विश्व का मालिक को कौन बनाएगा? वो खुद विश्व का बादशाह नहीं बनता है। कहा जाता है हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, बेताज बादशाह है, परंतु तुम बच्चों को नर से नारायण बनाता है। बाप ने इन्हों को राज्य दिया था ना, ये भी बच्चे समझते हैं, ये फुल पास हुए हैं। इन्हों के मां बाप कम पास हुए हैं। किन्हों के मां बाप? लक्ष्मी नारायण के माँ बाप वो कौन थे? लक्ष्मी नारायण को इस विश्व में प्रत्यक्षता रूपी जन्म कोई ने तो दिया होगा, कोई ने तो संसार में प्रत्यक्ष किया होगा। जैसे माँ बाप होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं, जन्म देना माना संसार में बच्चा प्रत्यक्ष हो जाता है, तो माँ बाप निमित्त बने। तो ऐसे ही इनको जन्म देने वाला कौन हुआ? पहले लक्ष्मी नारायण या पहले राधा कृष्ण? पहले लक्ष्मी नारायण। पहले संगम युगी लक्ष्मी नारायण, बाद में संगम युगी। पहले संगम युगी लक्ष्मी नारायण या पहले संगम युगी राधा कृष्ण? पहले संगम युगी राधा कृष्ण, बाद में संगम युगी लक्ष्मी नारायण। तो राधा कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? राधा कृष्ण जिनका जिक्र शास्त्रों में आया है वो सतयुग के राधा कृष्ण है या संगम युग के राधा कृष्ण? संगम युग के राधा कृष्ण है। अलग अलग राजधानी के थे या एक ही राजधानी के थे? वो अलग अलग राजधानी के थे जिनका शास्त्रों में जिक्र है। फिर उनके माँ बाप का नाम इतना नहीं गाया हुआ है। जरूर कम मार्क्स से पास हुए हैं इसलिए उनका इतना नाम नहीं है। माना जो संगम की लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं हैं उन्होंने ज्यादा सर्विस की, ईश्वरीय सेवा की, और उनके माँ बाप ने इतनी ईश्वरीय सेवा नहीं की। इन्होंने ज्यादा पवित्रता का पालन किया। पवित्र जीवन बिताने में इन्होंने ऊंची स्टेज प्राप्त की और इनके माँ बाप ने उतनी ऊंची स्टेज प्राप्त नहीं की है। इनका नाम दुनिया में कितना बाला है, सब देवताओं की ग्लानी की है, परंतु लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानी नहीं करते हैं। ये फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड कहे जाते हैं। अच्छा आज भोग है, बच्चों को समझाया है कि ये भी ड्रामा है। कदम कदम जो पास होता है उसे कहेंगे ड्रामा। ये पितर आदि खिलाना भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है, ये ड्रामा में नूद है। तो जब भोग लगाते थे बाबा के सामने तो किसको भोग ले जाते थे? है मम्मा को भोग ले जाते थे। मम्मा भी तो होती थी सामने, तब किसको भोग ले जाते थे? शुभा को ले जाते थे। सतयुग में पितरों को नहीं बुलाते हैं और यहां पितरों को भोग लगाते हैं। भोग लगाने के लिए पितरों को क्यों बुलाते हैं? अच्छा अच्छा भोजन बना के खिलावेंगे, परंतु वहां तो सदैव खुशी रहती है, सदैव स्वादिष्ट भोजन मिलते हैं। कहां? नई दुनिया में। यहां पितरों को बुलाते हैं फिर उनको अच्छा अच्छा भोजन बनाकर खिलाते हैं। ये तो जानते हैं शरीर बिगर आत्मा कुछ भी स्वीकार नहीं करती है। फिर पितर उनको अपना शरीर तो होता नहीं है, पितरों को बुलाते हैं तो जरूर ब्राह्मण के शरीर में आते होंगे। तो भावना होती है उनका जो असली शरीर है वो तो खत्म हो गया ना, बाकी आत्मा अविनाशी है। बंगाली ब्राह्मण होगा, मछली खाने वाला होगा, तो पितर को बुलावेंगे, ब्राह्मण को मछली खिलावेंगे। समझते हैं, अगर ब्राह्मण में पितर को बुलाया और मछली नहीं खिलाई तो उनको तृप्ति नहीं होगी। तो ये सब रसम रिवाज है। बाबा के सामने भी जो भोग आदि लगाते थे वो सब क्या हुई, रसम रिवाज है। भक्ति मार्ग में जो कुछ कर चुके हैं सो ड्रामा अनुसार फिर भी होगा, इसे क्या साबित कर दिया, इसे साबित कर दिया कि ब्रह्मा के जमाने में जो भोग आदि लगाने की रसम चलती थी वो कौन सा मार्ग है, वो सब भक्ति मार्ग है। तो इन बातों में तुम बच्चों को मुझने की दरकार नहीं है, ये सब ड्रामा में नूद है, इस नूद को मिटाए नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा अनुसार अपने समय पर ही आता हूं, कौन कहते हैं, बाप कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, बाप जहां कहते हैं बाप कहते हैं तो समझ लेना चाहिए बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप कहते हैं कि मैं भी ड्रामा अनुसार अपने समय पर ही आता हूं जो ज्ञान दो। माना ब्रह्मा के तन में आए तो वो बाप की बात नहीं है, वो माँ का पार्ट है। माँ होती है भक्ति और बाप होता है बीज, बीज बाप को कहा जाता है। इसलिए भगवान जो है भगवान के रूप में जब आता है तो बाप के रूप में आता है या माता के रूप में आता है, माता के रूप में आता है। माने पहले भक्ति या पहले ज्ञान, पहले भक्ति आती है फिर ज्ञान आता है। बच्चे को भी पहले माँ का परिचय होता है, माँ का ज्ञान होता है कि पहले बाप का ज्ञान होता है, पहले भक्ति आती है फिर बाप ज्ञान रूप आता है। तो कल्प कल्प जो पार्ट बजाया है वो ही मैं भी बजाता हूं, मेरा पार्ट है ही पतितों को पावन बनाना। पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है, बिगर पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा देखो, वास्तव में सच्ची दिवाली याद की यात्रा है, इससे आत्मा का दीपक जलता है, ज्योति जग जाती है 21 जन्मों के लिए, बहुत बहुत कमाई हो जाती है। तुम्हारा नया खाता है नई दुनिया के लिए, दीपावली आती है तो नया चौपड़ा बनाते हैं ना, ये भी तुम्हारा 21 जन्मों के लिए नया खाता तैयार होता है। अच्छा मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। छोटा सा रात्रि क्लास है 2 नवंबर 1967 का। कोई ने अनुभव ऐसा सुनाया कि हमको बाप का ज्ञान योग बहुत अच्छा लगा, वो जो दुनियावी पढ़ाई है वो तो बहुत डिफिकल्ट है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना समय देना पड़ता है और कितना खर्चा पढ़ाई में लग जाता है, भक्ति में भी खर्चा लग जाता है और ये बाप तो कितना नॉलेजफुल है, कितना विस्तार का ज्ञान देते हैं, समझाते हैं भक्ति मार्ग में तुमने हर बात में बहुत तकलीफ देखी है परंतु बाप यहां आकर के बहुत सहज पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं 84 का चक्र याद कर रहे हैं और दूसरा सब्जेक्ट है याद की यात्रा का, अपन को आत्मा समझे बाप को याद करो तो तुम जरूर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। पहले पहले थे भी सतो प्रधान, अभी सारी दुनिया ही तमो प्रधान है, तो आत्मा भी तमो प्रधान बन गई है। तुम जानते हो हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन अभी हम विश्व के मालिक बनते हैं, है तो अति सहज। हाँ, माया का तूफान थोड़ा तंग करता है, याद नहीं करने देता है। कुमारों को तो और ही सहज है, शादी के बाद स्त्री की याद, बच्चों की याद, परिवार का विस्तार होता जाता है तो वृद्धि होती जाती है, उन सबको भूलना पड़ता है। कुमारों को तो बहुत सहज है, गुरु नहीं किया है वो भी अच्छा है। तो अक्सर करके जो कुमार कुमारियां हैं वो स्वतंत्र हैं, उनको सहज है। बाप कहते हैं इन सब देह सहित देह के संबंधों को भूल जाओ, अपन को आत्मा समझ वापस जाना है। इनको तुम देखते हो तो तुम्हारी दिल खुश हो जाती है। कोई भी डिफिकल्टी हो तो बाप से राय लेनी चाहिए। गायन भी है, किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी ले गए चोटा, किसकी आग जलाए, ये सब इस विनाश के समय का ही गायन है। धन कोई के भी काम नहीं आवेगा, अंत में ये अविनाशी धन ही काम आवेगा। चोर भी देखो कैसा डाका लगाते हैं, तो सफल ही होगी उनकी जो खर्चे नाम धनी के। अब धनी तो बेहद का बाप ही है, वो तो दाता है। कोई को ऐसे नहीं समझना चाहिए हम बाबा को देते हैं, नहीं, बाबा लेकर के क्या करेगा, कहां ले जाएगा। बाप से तो लेते हैं ना, बच्चे जानते हैं बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, सुख शांति की दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। बाप खुद तो सुख अथवा दुख नहीं लेते हैं, न दुख लेते हैं और न सुख लेते हैं। हाँ, तुमको सुख की दुनिया में ले जाते हैं, तो तुम बच्चों को विश्व का महाराजा महारानी बनाते हैं। भारत में महाराजा महारानी थे, और धर्मों में महाराजा महारानी नहीं कहते हैं। क्यों? और धर्मों में राजाएं होते हैं कि महाराजाएं होते हैं? और जो धर्म खंड हुए हैं उनमें राजाएं हुए हैं या कोई महाराजाएं भी हुए हैं? राजाएं हुए हैं। क्यों? उन धर्मों में सिर्फ राजाएं होते हैं और यहां महाराजाएं भी होते हैं, उसका कारण क्या है? हाँ, क्योंकि राजाएं तो अनेक होते हैं और सम्राट, सम्राट एक ही होता है, वो बाप ही आकर के बनाते हैं। बाप कहते भी हैं मैं तुमको राजाओं का राजा, महाराजाओं का भी महाराजा बनाता हूं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से ये बनते हो, कहते भी हो बाबा हम आपसे पढ़ करके ये लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हैं। सत्यनारायण की कथा भी है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, अर्थात राजाओं का राजा बनना, इसमें पवित्रता मुख्य है। बाप ने समझाया है, अभी तुम अपवित्र होने के कारण देवताएं नहीं कहला सकते। बाकी तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के। फिर आदि सनातन हिंदू धर्म क्यों कह देते हैं? बाप कहते हैं, अभी मैं फिर से बच्चों को मनुष्य से देवता बनाता हूं। अभी मनुष्य सब आसुरी गुणों वाले हैं और देवताएं होती हैं दैवी गुणों वाले। अभी तुम लक्ष्मी की पूजा आदि करते, अभी तुम लक्ष्मी आदि की पूजा थोड़े ही करेंगे, कोई लक्ष्मी से धन थोड़े ही मांगेंगे। भक्ति मार्ग में किससे धन मांगते हैं? लक्ष्मी से धन मांगते हैं। है कहां की यादगार? संगम युग में कहां मांगते हैं लक्ष्मी से धन? है यहां संगम युग में कोई है ऐसे ब्राह्मण जो लक्ष्मी से धन मांगते हैं? अंत में मांगेंगे, अंत में
सबको लक्ष्मी से धन।
ज्ञान बाप देते हैं या लक्ष्मी देती है? तो अभी कौन मांगते हैं लक्ष्मी से धन? ज्ञान धन भी लक्ष्मी से कौन मांगते हैं? कोई मांगते हैं? अभी जब तक मालाएं तैयार होती हैं तब तक भगवान बाप ही आकर के मालाएं तैयार करते हैं। जब ज्ञानियों की माला बनकर तैयार हो जाती है तब भक्तों की माला शुरू होती है। तो जब भक्तों की माला शुरू होती है तो वो भगवान के पीछे भागेंगे या लक्ष्मी के पीछे भागेंगे? फिर वो लक्ष्मी के पीछे भागते हैं। तो तुमको तो अंदर में खुशी है कि हमें भगवान मनुष्य से देवता बनाते हैं, हम ये बन रहे हैं। तो तुम्हारी दीपावली तो समझ से होती है, वो तो स्थूल दीपक जलाते हैं, और तुम चैतन्य दीपक जलाते हो। भक्ति मार्ग के लिए ही कहा जाता है, हर एक अपने से पूछे कि हम कोई उल्टा काम तो नहीं करते हैं, कोई बेसमझी का काम तो नहीं करते हैं। मान लो देवाल दीपावली आती है तो दीपावली में हम कहीं दीपक तो नहीं जलाते हैं? अगर हम भी दीपक जलाते हैं दीपावली के दिन तो हम ज्ञानी हुए, उल्टा काम करने वाले हुए या भक्त हुए? तो उल्टा काम हो गया, समझ पूर्वक काम होना चाहिए ना। हर एक अपने से पूछे, हम कोई भी ऐसा काम न करें जिसमें भक्ति मार्ग की बू आती हो। श्रीमत से अपन को सुधारना है कि हमसे फिर कोई ऐसी भूल न हो। अगर भक्ति मार्ग की भूलें जो 2500 साल करते रहे, वो ही भूलें अभी भी करते रहेंगे तो अंजाम क्या होगा? हम स्वर्ग का मुख नहीं देख पाएंगे, शरीर छोड़ना पड़ेगा। इन बातों की डायरी रखना है। ऐसे ही अपने को घाटा और जमा का पता नहीं पड़ेगा, इसलिए बाप कहते हैं डायरी रखो, गफलत मत करो। कोई भी रंग काम नहीं करना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो रंग काम ही कराई देती है। जब तक बाबा ब्रह्मा के तन में शिव ने आके प्रवेश किया तब तक ब्राह्मण परिवार में कोई अज्ञानता के आडंबर होते थे नहीं होते थे। जैसे ही बाबा ने शरीर छोड़ा उसके बाद देहधारियों के हाथ में यज्ञ का शासन आया और सारे भक्ति मार्ग के आडंबर शुरू हो गए। कोई एक धर्म की ही बात नहीं, सब धर्मों के आडंबर शुरू हो गए ब्राह्मणों की दुनिया में। तो माया ये सारे कार्य कराए देती है, फिर अंदर खाता रहता है। चोट खाने से दिल में खाता है ना कि हमने हार खा ली, तो तुमको भी अंदर में जांच रखनी है कहां हम कोई माया से हार न खा जावे। तुम्हारा सौदा तो बहुत सस्ता है, कौड़ी देते हो और हीरा लेते हो, दीपमाला भी है, अपने से ही प्रतिज्ञा कर लो अब हम कोई आसुरी कर्तव्य नहीं करेंगे। हमको यहां इसी दुनिया में इसी जीवन में ही दैवी गुण धारण करने हैं, समझते तो हो ना कि 63 जन्म में माया ने हमको क्या बनाई दिया। तो ड्रामा में हमारा ही पार्ट है तो बहुत खुश होना चाहिए। देखा ना इस बाबा ने क्या किया, इनको विश्व की बादशाही मिलती है। तो जब विश्व की बादशाही मिलती है तो इन कौड़ियों को क्या करेंगे। परंतु टाइम लग जाता है, अपनी संभाल रखनी है, अपना रोज का पोता मेल और फायदा देखना चाहिए। जितना याद में रहेंगे आमदनी बहुत होगी। तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा शरीर दोनों ही पूजे जाते हैं, और मेरी सिर्फ आत्मा का पूजन होता है, तुम्हारी आत्मा का भी पूजन होता है क्योंकि आत्मा भी पवित्र बनती है और शरीर भी पवित्र बनता है। मेरा अपना शरीर कोई होता ही नहीं, परंतु मेरी आत्मा क्या पवित्र बनती है। मैं तो सदैव पूज्य हूं, इसलिए मुझे एवर प्योर कहा जाता है। मैं कभी पतित बनता ही नहीं। तो बाप कहते हैं मेरी अविनाशी आत्मा है, वो आत्मा की ही पूजा होती है। तो देखो बाप कितना निरहंकारी है। बच्चों को भी ऐसा बहुत मीठा बनना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।
हाँ जी,
बाबा हमारा सच्ची गीता पाठशाला है ना, सच्ची गीता पाठशाला का बोर चलाना पड़ेगा घर में, घर के बाहर में
तो होना ही चाहिए। सबको आकर के लोग लड़ेंगे ऐसे, तुम्हारी सच्ची गीता पाठशाला तुमने कैसे लिख दी।
सबको दिखाने के लिए बाहर में बोर्ड लगाना चाहिए ना,
नहीं तो बोर्ड अंदर लगा देते हैं।
अंदर बाहर नहीं,
कोई आके देखे नहीं, पूछे नहीं,
बाहर नहीं, अंदर है तो कैसे देखेंगे। सब
लगा देते हैं अंदर, बड़ा बोर्ड लगाना चाहिए तिराहे चौराहे पर, तीर का निशान लगा दे।
आने जाने वाले लोगों को दिखाई पड़ेगा, बाहर लगाना।
वाह, ये बोले ना कि पूजा करते हैं वो सिर्फ संपन्न स्टेज वालों की पूजा होनी चाहिए। संपन्न स्टेज की पूजा होती है,
संपन्न स्टेज की पूजा नहीं होती है, पवित्रता की पूजा होती है।
फिर धर्म पिताओं की पूजा क्यों होती है, वो लोग क्यों करते हैं?
विदेशी पिताएं वो ऊपर से आत्माएं पवित्र आती है, अभी तो बताया।
लेकिन जिस
जो धर्म पिताएं होती हैं वो ऐसे नहीं कि जिसमें प्रवेश किया है वो धर्म पिताएं, जो ऊपर से आत्मा आती है वो मान मर्तबा लेती है, कोई शिष्य होता है तो जब तक वो पढ़ाई पढ़ता है वाराणसी में जाकर के वो अपना लकवा अकवा ले तब तक तो उसका मान मर्तबा होता नहीं, पर जब वो शंकराचार्य की गद्दी पे बैठता है तो उसमें नई सोल प्रवेश करती है तब उनका मान मर्तबा होता है। जो भी है विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस है, आचार्य रजनीश है, जिन जिन का भी मान मर्तबा पहले नहीं था और अचानक उनका मान मर्तबा बढ़ गया, तो इससे साबित होता है कोई नई आत्मा पवित्र सोल ने आकर के उनमें प्रवेश किया और उनकी पूजा हो रही।
दूसरा जी, त्रिमूर्ति के चित्र में जो साइड में लिखा हुआ है उसमें क्या कि मैं आकर के कृष्ण वाले तन में प्रवेश करके इसको नारायण बनाता हूँ, लेकिन एक्चुअली वो तो राम वाली आत्मा में प्रवेश करता हूँ। राइट साइड में जो मैं बेबत्सो मैं निराकार मैं कृष्ण की आत्मा में प्रवेश करके उसको नारायण बनाता हूँ।
जिस कृष्ण की बात वहाँ लिखी गई है वो भक्ति मार्ग के कृष्ण की बात बताई है
संगम
या संगम की कृष्ण की बात बताई?
ठीक है, संगम कृष्ण की बात, लेकिन राम वहाँ पे राम का भी नाम हो सकता है ना?
जो राम है वो ही तो कृष्ण बनता है,
राम का
जो नारायण है वो ही राम बनता है, जो नंबर के नारायण बनेंगे उसी नंबर के राम सीता बनेंगे, अलग अलग थोड़े ही है।
वहाँ पे राम का भी नाम, राम का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो कृष्ण का जहाँ पे कृष्ण का नाम है
संगम भी कृष्ण की बात है, वो कृष्ण की बात नहीं है।
लेकिन संगम कृष्ण भी तो राम ही बनता है ना,
वो अलग अलग है ही नहीं।
फिर राम होना
जो राम बनेगा वही तो राम राज्य लाएगा, कृष्ण थोड़ा ही राम राज्य लाता है।
तो राम होना चाहिए नहीं होना?
राम जो है वो त्रेता के लिए प्रसिद्ध कर दिया है भक्ति मार्ग, क्योंकि ये तो कोई जानता ही नहीं, ये जो त्रेता का राम है वो ही संगम युग में निराकारी राम उसमें प्रवेश करके प्रत्यक्ष होता है, ये बात तो बाप ने आकर के बताई। कोई भी लिखत होती है या कोई भी बोली हुई बात होती है तो उसको समझने का भी तरीका होता है, हम उसको पॉजिटिव रूप में समझें या निगेटिव रूप में समझें। तो जहाँ कृष्ण दिया हुआ है वो कृष्ण शब्द दुनिया वालों को समझाने के लिए है या एडवांस वालों को समझाने के लिए? दुनिया वाले तो कौन से कृष्ण की बात करते हैं, संगम की कृष्ण की बात करते हैं या सत्य की कृष्ण की बात करते हैं? वो तो उस कृष्ण की बात करते हैं जिस कृष्ण के साथ कंस भी था, सत्य में तो कृष्ण के साथ कंस होने की बात ही नहीं है। और
घर में हमारा त्रिमूर्ति झंडा तो नहीं पहनना चाहिए, ऊपर में त्रिमूर्ति झंडा सब बोलता है ऊपर झंडा हो, त्रिमूर्ति झंडा ना डालता
ऊपर नहीं डालना चाहिए, क्यों
सबको मान हमारा इच्छा है ऊपर में हमारा झंडा त्रिमूर्ति झंडा डालना का इच्छा है
घर के ऊपर।
अरे सब लोग बोलते हैं कि ऊपर त्रिमूर्ति झंडा नहीं होना चाहिए तो आपने नहीं लगाया?
आपके बात
मुरली में नहीं बोला झंडा लगाओ,
लगाओ बोला है,
कपड़े का ही झंडा लगाओ लेकिन कपड़े का भी सच्चा झंडा लगाओ ना, वो तो 32 करोड़ों वाला शिवलिंग लगाए देते।
तो संगठन के समय में सब लगता है,
है?
जब संगठन होता है ना वो संगठन के दिन में वो झंडा लगता है,
एक ही दिन लगाते हैं क्यों?
पूछता हूँ आपको,
बाकी झंडा उतार नीचे झंडा नीचा हो जाता है, तो गाते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा सदैव झंडा ऊंचा रहे।
झंडा ऊंचा रहे।
यहाँ बीके वालों है ना, बीके वालों भी यहाँ एडवांस कोर्स लेने के बाद प्रभा प्रजापिता ब्रह्म कुमार हो गए ना, वो यहाँ गीत सुनने के बाद भी वो झूठे गीत पाठशाल को वो लोग जा रहे हैं।
निश्चय नहीं बैठा पाते होंगे आप उनकी बुद्धि में ये बैठा नहीं पाते हैं कि वास्तव में साकार में परमपिता परमात्मा शिव इस समय काम कर रहा है।
वो बोलता है वहाँ माँ है, माँ का पाठ करता है
कहाँ वहाँ माँ
ओ जुटी के
तो आपने ये नहीं समझाया होगा कि वो माँ यहाँ काम करती है
तो भी वो चलता है
ये नहीं समझाया। अगर उनकी बुद्धि में ये बैठा दे कि प्रैक्टिकल में साकार में वो माँ यहाँ है जिसकी पूजा होती है, अगर माँ वहाँ है तो माँ की दाढ़ी मूछ वाले की पूजा होती है क्या?
उसको बुद्धि में वैसा लगता है हम क्या करते हैं?
आप सुनाते
हैं बार बार में सुनाते हैं तो भी वो जान रहा
है जो भी कमी है वो हमारे अंदर है।
वो बोलता है वहाँ प्रजापिता का मन में बुद्धि लगा करके वहाँ जा करके गीत सुनना है। वहाँ
बुल्ली में तो बोला गीत गाना नहीं है, वास्तव में गीत सुनना ही नहीं, क्योंकि जब बाबा ही बता रहे हैं बिना सामने खड़ा है तो बिना सामने खड़ा हो मार काट तैयार हो रही हुई पड़ी हो, अभी मार काट हुई की हुई खून की नदियां बही की बही, तो वहां तुम गीत गा सकते तबला सारंगी बजाओगे।
अच्छा अभी क्लियर हो गया ना?
जाएगा तो नीचे उतरेगा ऊपर जो भी एडवांस है आने के बाद यार बीके क्लास में जाएगा वो नीचे उतरेगा ना,
बिल्कुल नीचे
उसका संस्कार वैसा है हम क्या
उसने वो निश्चय बुद्धि बनाए ही नहीं,
उसका संस्कार वैसा है हम क्या कह रहे
हैं?
जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, कितना भी समझा लो।
आप
दो माताएं थी नाम तो यहाँ रखे हुए, यहाँ समझाने के लिए नाम रखे हुए हैं कि एक राधा थी दूसरी माता थी
गीता माता।
अच्छे अच्छे बच्चे थे मम्मा बाबा को भी ड्रिंक कराते थे,
अच्छी अच्छी बच्ची
बच्चे थे उस समय। मम्मा वो नामधारी जगदम्बा मम्मा ज्ञान में आया है या नहीं आया है उनके लिए बोलते हैं बीच में आया बीच में गया।
ओम राधे
ओम राधे
ओम राधे तो बाद में ही आई, शुरुआत में कहाँ आ गई? अगर पहले शुरुआत में आ जाए तो फिर सत्युग के आदि में जन्म कैसे होगा?
नहीं तो ये पॉइंट कैसे लागू होगा?
मम्मा बाबा को भी ड्रिल सिखाती थी, इसका मतलब कोई थी जो पहले ही यज्ञ में आ चुकी थी, बाद में मम्मा भी आ गई तो उनको भी ड्रिल सिखाया। अच्छी अच्छी बच्चियाँ जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल सिखाती थी, इसका मतलब ये नहीं कि मम्मा बाबा को सन 36 में ड्रिल सिखाती थी, बाद में जब मम्मा आ गई तब ड्रिल सिखाती थी।
याद की यात्रा कैसे बढ़ाना है? हम घर में बैठ कर याद करते हैं, इसका प्रूफ हम कैसे दे सकते?
याद की यात्रा को प्रत्यक्ष करना है क्या?
प्रत्यक्ष नहीं,
प्रूफ किसको देना है?
प्रमाण होना चाहिए।
किसको प्रूफ देना है?
बाबा को।
बाबा को प्रूफ? बाबा जानता नहीं है क्या? चेहरा ही चमकने लगता है। याद की यात्रा बढ़ती है चेहरा ही चमक जाता है, खुशी चेहरे पर खुशी दिखाई पड़ती है, तेरे बहाने सर्व का भला करने लग पड़ता है। याद की यात्रा तो हमारी गुप्त है, गुप्त यात्रा को प्रत्यक्ष करने की बात नहीं है, लेकिन है
बाप भी गुप्त है और हमारा याद क्या
है? याद की यात्रा भी गुप्त है।
ऐसे भी नहीं, याद की यात्रा करने वाले सर्विस कर नहीं पाते, सर्विस में सक्सेस हो नहीं पाते, तो याद की यात्रा है या नहीं है?
जो याद की यात्रा करने वाले होंगे, भले कोई में बिल्कुल ज्ञान न हो, ज्ञान सुनाई नहीं सकते हैं दूसरों को, लेकिन बाबा ने बोला है कि अंत में उनमें ज्ञान स्वतः ही इमर्ज हो जाएगा, माने कोई न कोई ऐसी आत्मा उनमें प्रवेश करेगी जो सारा ज्ञान क्लियर करके सुनाएगी। जैसे अभी बाप दादा बच्चों में प्रवेश करते हैं, बच्चे समझते हैं हमने सेवा की, लेकिन वास्तव में बच्चे तो तमो प्रधान बने पड़े हैं, वो तो सेवा नहीं कर सकते, बाप दादा ही बच्चों में प्रवेश करके सर्विस करते हैं। हाँ, बच्चे हिम्मत करते हैं, हिम्मत करते हैं तो बाप दादा से मदद मिल जाती है। संख्या ज्यादा दिखाई पड़ रही है
बाबा। एक अभी हम घर में एक ही रहते हैं, माता ने फारी का लगाया, चले गए फारी, रमणी माता ने वो लंदन चली गई।
अच्छा,
अभी मैंने टीपी गुड़म बार बार एक महीने का एक बार जा रहा हूँ। अभी घर में कोई रहने के बाद जा सकते हो क्या? गीता पाठशाला खोल करके बंद करके जा रहे हैं,
तो आपकी इच्छा के ऊपर है
ना, छुट्टी रहना पड़ेगा ना एक एक दिन।
यहाँ तो गीता पाठशाला की छुट्टी होती ही नहीं है, दुनिया भी स्कूल है उनमें छुट्टियाँ होती है।
अच्छा, जो माता है वो ज्ञान में चलते है, कोई माता वो भट्टी नहीं किया, वो माता का रक्षक तो है ना घर में।
अरे माता से तो पूछ लो कि हमारे से पूछेंगे जबरदस्ती रख देंगे
ना, जबरदस्ती नहीं, वो इच्छा से, माता का इच्छा से।
हाँ,
वो गीता पाठशाल में रहते सर।
लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे
ना? ना, एक दिन के लिए।
एक दिन के लिए लक्ष्मी नारायण बनेंगे?
एक दिन के लिए
है? वो माता का लक्ष्य क्या होगा, एक दिन के लिए लक्ष्मी नारायण बनने का या सदा काल के लिए लक्ष्मी नारायण बनने का?
करने के लिए
है,
रास करने के लिए।
लक्ष्मी नारायण बनने के लिए नहीं,
लक्ष्मी करा दो।
ये पॉइंट आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में।
बाबा जो माता जी पूछे ना, छोटे 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 बच्चे थे जो जब घुमरा थे मम्मा की, जब ज्ञान में आई उसमें तो क्या जो आदि राधा थी और उसमें तक जीवित थी क्या?
हाँ जी, वो बच्चियों के लिए तो बोला है कि जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, पाकिस्तान बनने तक उनका जन्म हो चुका, दोनों माताओं के लिए बोला। प्रजापिता तो पहले ही शरीर छोड़ गया। प्रजापिता के लिए तो पहले ही बोल दिया, कोई 25 साल के हो गए होंगे, मेरे के लिए 20 साल बोला है, वो सन 47 में आता है। शांति धाम वासी बन जाएंगे तो फिर विशाखापट्टनम जल्दी जाना पड़ेगा शांति धाम।
जल्दी से जल्दी।
हाँ, जल्दी जाना पड़े।